नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल इटली जाएंगे। कुवैत में आग की घटना में लगभग 40 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों और पश्चिम बंगाल के गांगेय इलाके में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना जताई। और न्यूयॉर्क में पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और अमरीका के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज शाम भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण की। दो उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने भी शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, जुएल ओराव, धर्मेन्द्र प्रधान, भूपिंदर यादव और भाजपा शासित राज्यों के कई मंत्री, बीजू जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी आज ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री मांझी ने अपनी राजनीतिक करियर 1997 में सरपंच के रूप में शुरू किया था। बीजेपी नेता कनक वर्धन सिंह दो और प्रभाती परिडा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुरेश पुजारी, रवि नारायण नायक, कृष्ण चंद्र पात्र, डॉ मुकेश महालिंग, पृथ्वीराज हरिचंदन, विभूति भूषण जेना, डॉ कृष्ण चंद्र महापात्र और नित्यानंद गौड़ ने भी मोहन मांझी के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने वाले अन्य राज्य मंत्रियों में गणेश राम सिंह खुंटिया, सूर्यवंशी सूरज, प्रदीप बालासामंत, गोकुलानंद मल्लिक और संपत चंद्र स्वाय शामिल है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज ओडिशा के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से ये टीम ओडिशा में विकास कार्य करेगी और लोगों के जीवन को और बेहतर बनाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने भी आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने कृष्णा जिले के केसरपल्ली आईटी पार्क में उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ जनसेना पार्टी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 सदस्य सहित 24 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार आंध्र प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दल के नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज शाम राज्यपाल केटी परनायक से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले दोपहर में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री खांडू को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ उपस्थित रहे। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की 3 सीटों पर एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन से होगा। चौथी सीट पर भाजपा, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शिक्षक भारती के उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल इटली जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में भारत को आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलन के विश्व नेताओं के साथ एकजुट होने का अवसर होगा।
This will be Prime Minister's first overseas travel after resuming office in his third consecutive term. It will also afford him an opportunity to engage with other world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as also to the Global South.
शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और श्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आउटरीच सत्र में शामिल होंगे।
Prime Minister will participate in the outreach session along with the other countries invited for the outreach summit. At this session, the focus would be on artificial intelligence, energy, Africa and the Mediterranean. It will be a block agenda item where the G7 and the outreach countries would share their views and perspective.
इस अवसर पर श्री मोदी G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि स्विट्जरलैंड में होने वाले यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भारत उचित स्तर पर शामिल होगा। इस महीने होने वाले सम्मेलन में लगभग 90 देश शामिल होंगे। कुवैत के मंगफ शहर में प्रवासी श्रमिकों की 6 मंजिला भवन में आज सुबह लगी भयंकर आग में 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य कई लोग घायल हैं। मृतकों में 10 भारतीय नागरिक हैं। इस भवन में लगभग 195 मजदूर रहते थे, जिसका स्वामित्व मलयाली व्यवसायी केजी अब्राहम की कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर 9656055052446 जारी किया है। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने फरवानिया अस्पताल में घायल श्रमिकों से मुलाकात की और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। भारतीय दूतावास कुवैती कानून प्रवर्तन, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इधर तमिलनाडु सरकार ने कुवैत में भारतीयों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। इसका नंबर है 800-309-3793 और 806-900-9900। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य प्रवासी कल्याण मंत्रालय से आग दुर्घटना में प्रभावित लोगों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में लगी आग की घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आग दुर्घटना में घायल हुए लोगों की सहायता की निगरानी के लिए तुरंत कुवैत जा रहे हैं। वे घटना में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कुवैत शहर में भीषण आग दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मानवाधिकार और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने कहा कि प्रांतीय चुनाव के अभाव में क्षेत्र के लोगों को पूरे साल स्थानीय सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला और 2023 में अधिनियमित एक भी कानून नहीं बनाया गया। आयोग ने आरोप लगाया कि 2023 में कई आतंकी हमलों और सुरक्षा अभियानों में 160 से अधिक पुलिसकर्मी, 70 सैन्यकर्मी, 60 नागरिक और 170 से अधिक कथित आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सोहल गांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक और आतंकी मारा गया। अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद कल देर शाम ये मुठभेड़ हुई। इस दौरान घायल सीआरपीएफ जवान की आज मृत्यु हो गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रहेगी।
सबसे ज्यादा तापमान जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हो रहा है और तापमान का जो रेंज है 44 से 47 रिपोर्ट हुआ है। उसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी 44 से 46 आ रहा है और बिहार, झारखंड और हमारा जो बंगाल का इलाका है वहाँ 43 से 45 रिपोर्ट हो रहा है।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ये ऑरेंज अलर्ट पर है 13, 14, 15 जून को और इसमें लू चलने का बहुत ज्यादा संभावना है। गर्मी हवा तो इसीलिए सभी को चेतावनी दिया जाता है कि 11 बजे से आफ्टरनून जो है 3-4 बजे तक बाहर न निकले।
दूसरी ओर दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों तथा तेलंगाना में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ और हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में अगले 3 से 4 दिन में इसके पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश होने का भी अनुमान है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राहत आयुक्तों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं का 2 दिन का वार्षिक सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। समापन सत्र में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने स्थानीय स्तर तक आपदा प्रबंधन योजना बनाने पर जोर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 100 दिन की कृषि कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। श्री चौहान ने अधिकारियों से किसानोन्मुखी कार्यों पर ध्यान देने को कहा ताकि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप तेजी से काम हो सके। उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिये। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्रालय का विवरण उन्हें प्रस्तुत किया गया और मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला अमरीका के साथ जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक अमरीका ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। कल त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज का मुकाबला न्यूजीलैंड से, सेंट विंसेंट में बांग्लादेश का मुकाबला नीदरलैंड से और एंटीगा में इंग्लैंड का मुकाबला ओमान से होगा। सिडनी में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय ने आज ब्राजील के यगोर कोएल्हे को 21-10, 23-21 से हराकर पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल इटली जाएंगे। कुवैत में आग की घटना में लगभग 40 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों और पश्चिम बंगाल के गांगेय इलाके में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना जताई और न्यूयॉर्क में पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और अमरीका के बीच मुकाबला जारी।